समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, परिक्रमा के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज के संक में देश विदेश के समाचार क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास जब हम चलेंगे तो उनसे जानेंगे कि उनके क्षेत्रों में क्या गतिविधियां हो रही हैं और वो हमें उनसे रूबरू कराएंगे। इसके अलावा नजर होगी खेलों की दुनिया पर और हम याद करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को जो किसी न किसी रूप में आज के दिन से जुड़े हुए हैं। आज के इस अंक में अभिषेक मुखोपाध्याय के साथ मैं नवीन सक्सेना।
हेलो नवीन, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट नवीन सक्सेना। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेडलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट। Prime Minister Narendra Modi with his Bhutanese counterpart sharing Tobge inaugurates state-of-the-art mother and child hospital built with Indian support in Thimphu.
Videsh Mantri Subramaniam Jaishankar 3 din ki yatra par Singapore pahunch gaye hain.
External Affairs Mr. Dr. S. Jaishankar reaches Singapore on a 3-day visit.
Antarrashtriya samudaye ne Rus mein aatanki hamle ki ninda ki.
Over 20 killed in several villages of Punjab's Sangrur after consuming spurious liquor.
और आईपीएल क्रिकेट में इस समय पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से हो रहा है और आज ही एक अन्य मैच में शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे।
And now, Navin, it's time for a segment, Dateline India, which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Shahid Divas.
आज का दिन शहीदों के बलिदान को। आज का दिन शहीदों के बलिदान को याद कर उन्हें नमन करने का दिन है। हर साल 23 मार्च देश में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी आज के दिन 3 महान देशभक्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। आज देश मातृभूमि के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले भारत माता के महान सपूत शहीद आजम, शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को नमन करता है। ये तीनों आजादी के गीत गाते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। इनका शौर्य और मातृभूमि की आजादी के प्रति साहस सभी युवाओं को भी आज प्रेरणा देता है। देश की आजादी की लड़ाई में इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता।
The day is marked by reverence and respect as a nation pays homage to those who laid down their lives for the cause of independence. It is a time for reflection, contemplation and remembrance as the sacrifices of the past continue to inspire generations. Shahid Divas encapsulates the spirit of resilience, patriotism and unity that characterized India's struggle for liberation, and as the nation pauses to commemorate this day, it reaffirms the enduring legacy of courage and determination that defines the ethos of the Indian nation.
Bhagat Singh अपने साथियों शिवराम, राजगुरु और सुखदेव थापर के साथ अपने साहसिक कारनामों से देश के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए। 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंके। उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर हत्या का आरोप लगाया गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई।
भगत सिंह, नोन एज द शहीद ए आजम मार्ट ऑफ द नेशन, वॉज अ कैरिस्मैटिक एंड इन्फ्लुएंशियल फिगर इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। His revolutionary ideology, along with compatriots Rajguru and Sukhdev, inspired countless others to join the fight against British imperialism. Their martyrdom galvanized the nation, sparking widespread protest and further fueling the struggle for freedom. The sacrifices made by Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev became emblematic of the indomitable spirit and unwavering commitment of Indians towards attaining independence. On this occasion, emotional tributes have been paid to these martyrs across the country, including Punjab. We have a report.
Fairs will be organized every year on the pyres of martyrs. This will be their last race. On these lines, special martyrdom functions are being organized at Bhagat Singh's native village, Khatkat Kalan in Shaheed Bhagat Singh Nagar district and National Martyrdom Memorial at Husainiwala in Firozpur district of Punjab. On 23rd March 1931, the last rites of the three martyrs, Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev were performed in Husainiwala itself. After the martyrdom of Bhagat Singh, Durga Bhabhi, wife of his close friend Bhagwati Charan Vora, who was herself a revolutionary warrior, had said, "The gallows become his pavilion, the noose become his garland, and death become his bride." Salutes to these brave freedom fighters who became immortal for the country. Sheshu Sharma Shantal, Akashwani News, Jalandhar.
परिक्रमा में अब वक्त है क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि क्या कुछ हो रहा है उनके पास. तो अभिषेक, सबसे पहले कहां लिए चल रहे हैं?
यस, वी स्टार्ट ऑफ विद अ स्टोरी फ्रॉम करगिल. एंड एज द अनाउंसमेंट्स ऑफ इलेक्शंस ड्रॉज नियर, द एसवीईपी सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन एफर्ट्स इन करगिल हैव बीन सिग्निफिकेंटली एम्प्लीफाइड. वेरियस इनिशिएटिव्स एम्ड एट रेजिंग वोटर अवेयरनेस एंड एनहांसिंग पार्टिसिपेशन have been launched across different locations in the region. Let's hear more.
From bustling marketplace to remote villages, various awareness campaigns and training sessions have been organized at regular intervals. These initiatives aim to educate citizens on the electoral process, including the use of electronic voting machine, EVMs, voter-verified paper audit trials, VVPFs, and the importance of ethical conduct during elections. Under the guidance of District Election Officer Kargil and SWEEP Nodal Officer, SWEEP activities have been tailored to reach diverse demographics and communities. Through interactive sessions and informative materials, citizens are empowered to make informed decisions and actively participate in the democratic process. The increased focus on SWEEP activities in Kargil underscores the commitment of local authorities to ensure smooth and fair elections. With ongoing efforts to promote voter education and engagement, the region is poised for a vibrant and inclusive electoral exercise. For Parikrama, this is Anad Ali from Kargil Union Territory of Ladakh.
अभिषेक, पूरे देश में इस समय चुनावी गहमा गहमी है और इसी के चलते हम आपको सबको लिए चलते हैं अरुणाचल प्रदेश, जहां राज्य की 60 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों के लिए अगले महीने 19 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा. आइए जानने के लिए चलते हैं सीधा अपने सहयोगी राकेश डूले के पास.
अरुणाचल प्रदेश में राज्य के 60 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों के लिए अगले महीने 19 अप्रैल को एक चरण में मतदान होगा. चुनाव की अधिसूचना इस महीने की 20 तारीख को जारी की गई थी. नामांकन की आखिरी तारीख 27 मार्च को है. विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती 2 जून को होगी, क्योंकि उसी दिन पिछली विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होता है. दोनों लोकसभा सीटों की गिनती देश की बाकी सीटों के साथ 4 जून को की जाएगी. इस साल जनवरी में प्रकाशित इलेक्टोरल रोल के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में 8,82,816 मतदाता है, जिनमें 4,33,707 पुरुष और 4,49,050 महिला मतदाता है. राज्य में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है. पहली बार राज्य में 5 ट्रांसजेंडर मतदाताओं को पंजीकृत किया है. इस बार अरुणाचल प्रदेश में 2,226 मतदान केंद्रों में मतदान होंगे, जिनमें हायुलियांग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मालागांव गांव में मालागांव टेम्पररी स्ट्रक्चर पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं की संख्या सबसे कम है, जहां केवल 1 महिला मतदाता है. पिछले विधानसभा चुनाव में अरुणाचल में बीजेपी ने 41 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया था और राज्य के 2 लोकसभा सीटें भी जीती थी. राकेश डोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर.
द Zoroastrian Parsi community celebrates New Year in the city of Chennai. Members of the Zoroastrian Parsi community got together to celebrate at the Fire Temple in North Chennai. The community played a major role in the erstwhile Madras Corporation with a sizable number during the British Raj in the Madras Presidency. We have a report from our correspondent Joy.
Get-together for the Parsi community was held at Jal Firoz Club Wala Darhi Meher, a 113-year-old building on Raipuram's West Mada Street, and ushered in the Jamshedji Navroz in style. The Madras Parsi Zardosti Anjuman, the Fire Temple Trust, and the Cultural Association coordinated the community get-together. The day was to celebrate Jamshedji Navroz, who encouraged the community to work their produce throughout the year and celebrate with new harvest in spring. theater artist Roshan Cyrus Poncha, one of the 200 Parsis living in the city of Chennai, said that the day began at around 6 p.m. as they had a prayer at the Fire Temple followed by Monajat hymns. Monajat is an Arabic word and it means intimate conversation with God. Zarin Mistry, historian, said that the Zoroastrian Monajat dated back to 13th century. The dinner was then served with several delicious Parsi delicacies including akuri, rye potato, sali chicken, mutton pulao, dansak dal alongside musical accompaniments. Joy for Parikrama from Chennai.
In view of the upcoming Lok Sabha elections, we present you a capsule based on state profile giving details of number of phases, date of polling, number of seats and other relevant facts by a correspondent.
तो अभिषेक, सबसे पहले हम अपने सुनने वालों को मध्य प्रदेश लिए चलते हैं जहां लोकसभा की 29 सीटों के लिए मतदान हो रहा है और ये चार चरणों में होगा.
Yes, and various materials worth more than 14 crore 22 lakh rupees have been seized so far by the police and other enforcement agencies in the state in connection with the general elections. Our correspondent Sanjeev Sharma has the details.
In Madhya Pradesh, voting will be conducted by women polling personnel at 3,500 polling stations in Madhya Pradesh. Chief Electoral Officer Anupam Rajan informed that the entire polling team deployed at these polling stations will be of women only.
3,500 मतदान केंद्र हैं, महिलाओं के द्वारा संचालित. सोचा अधिक से अधिक प्रयास ये होगा कि और भी बढ़ाएं. इसी तरह से 250 मतदान केंद्र दिव्यांग साथियों के द्वारा संचालित हों. लोकसभा निर्वाचन में लगभग 5.5 लाख कर्मचारी हमारे लगेंगे.
In Madhya Pradesh, the voting process for the first phase will be completed on 19 April, while for the second phase on 26 April, for the third phase on 7th May, and for the fourth and final phase will be complete on 13th May. The result of all phases of counting will be declared on 4th June. More than 5 crore 63 lakh 60 thousand voters of the state will exercise their franchise in the elections. Sanjeev Sharma, Akashwani News, Bhopal.
आइए अब आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं. देश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, जनसंख्या सबसे ज्यादा है वहां पे देश की, और लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट भी वहीं पर है, और इस राज्य में भी 7 चरणों में चुनाव होना है. सीधा चलते हैं सुशील तिवारी के पास और जानते हैं कि क्या कुछ है उनके पास.
Uttar Pradesh has 80 Lok Sabha constituencies, the highest in the country. In 2014, the National Democratic Alliance won 73 out of 80 seats in the state. In the 2019 Lok Sabha elections, BJP's ally Apna Dal won 2 seats and BJP won 62. Later, in the by-elections in Rampur and Azamgarh, BJP won more 2 seats. In this way, NDA has a total of 66 seats. BSP had won 10 seats while SP had won 5 seats. Now SP has only 3 Lok Sabha seats. Congress has only 1 Raebareli seat. If seen in the terms of vote share, BJP got 50% votes while BSP got 19.4%, SP got 18% and RLD got 1.7%. BJP, SP, BSP and Congress have completed preparations for this election. The main contest in the state is between BJP and SP Congress alliance. RLD is also with BJP in this. Major political parties have announced the names of the candidates on many seats, but not all. On March 2 itself, BJP had released the first seat, repeat the first list of 51 names. In this, tickets were given to sitting MPs on 47 seats. Union Minister Rajnath Singh is contesting from Lucknow. SP has fielded former Minister Ravidas Malhotra against him. Prime Minister Narendra Modi will contest from Varanasi seat for the third consecutive time. Dimple Yadav is SP candidate from Mainpuri and Shivpal Singh Yadav from Badayu seat. BJP has again given a chance to Bhojpuri film star Ravi Kishan from Gorakhpur parliamentary seat. In front of him, SP has also fielded Bhojpuri actress Kajal Nishad. Sanju Balyan has got the ticket from Muzaffarnagar, an important seat of Western UP. SP has fielded Harin Malik against him. BJP has given opportunity to Dr. Mahesh Sharma from Gautam Buddh Nagar seat for the fourth consecutive time. Similarly, dream girl Hema Malini has been fielded from Mathura seat for the third consecutive time. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
And now it's time for the Defence News Capsule from the Directorate of Public Relations, Ministry of Defence. The report has been filed by Broadcasting Officer Anand Saurav.
Today marks the completion of 100 days of the ongoing maritime security operations by Indian Navy under the aegis of Operation Sankalpa. The Indian Navy has responded to the manifestation of Israel-Hamas conflict in the maritime domain by reorienting and significantly enhancing the scope of ongoing maritime security operations since mid of December last year. The Navy undertook proactive actions during hijacking of Malta-flagged bulk carrier MV Ruin on 14th of December last year. During this time, the Indian Navy has responded to 18 incidents and has played a pivotal role as the first responder and preferred security partner in Indian Ocean region. The significance of Indian Navy's contributions have been further underscored with the culmination of actions against the hijacking of MV Ruin. Addressing a press conference on the completion of 100 days of naval operations against operations for anti-drone, anti-missile and anti-piracy attacks in the Gulf of Aden, Arabian Sea and Red Sea, Chief of Naval Staff Admiral R. Hari Kumar said the Indian Navy will continue taking affirmative action to prevent such incidents. The Navy Chief said that the piracy has resurfaced as an industry to gain from the disorder in the region. However, the Indian Navy will take affirmative action to prevent that.
This 100 days of sustained Op Sankalp has also broken the myth of short and swift operations. Therefore, there is a need to realize that we need to be able to carry forward sustained operations if we need to ensure there is safety, security and stability in the oceans. Pace of operations has been quite high, and you may ask, are we able to sustain it? But indeed, I just want to say that as of yesterday, we had 11 submarines operating simultaneously at sea. We had more than 35 ships operating at sea. We had more than 5 aircrafts deployed in different parts of the Indian Ocean. So we are making sure that our assets are deployed in an optimal manner to ensure that it covers the areas of interest and gives us the best information so that the maritime domain awareness and requisite degree of transparency is achieved.
In some other news, former chairman of DRDO and top missile scientist Dr. G. Satish Reddy has termed the recent successful test firing of Agni 5 ballistic missile with multiple warhead technology, or MIRV, under Mission Divyastra a force multiplier.
Multiple independently targetable reentry vehicle MIRV, ek important mission hai desh ke liye. Ek missile pe 3 ya 4 warheads alag alag target ke upar ja sakta hai.
Another top scientist and also popularly known as Agni Putri, as she headed the Agni missile project, Dr. Tessie Thomas, has called this accomplishment as a game changer. She has also elaborated the role of women scientists in the Agni missile project.
Shuru se hi Agni missile ke design aur विकास पर काम करने का मौका मिला और अग्नि 1 टू अग्नि 5 एंड एमएआरवी मिशन डिजाइन एंड गाइडेंस डेवलपमेंट में मुख्य टीम का हिस्सा बना और कई मिसाइलों का सफल परीक्षण भी किया.
यू कैन लिसन टू देयर टॉक्स इन द पॉडकास्ट रक्षा सूत्र टुमारो एट 10 AM. फॉर परिक्रमा, दिस इज आनंद स्वादव फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस.
Now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
आज हम स्वतंत्रता सेनानी हेमू कलानी का स्मरण कर रहे हैं. उनका जन्म 23 मार्च 1923 को सुकूर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है. बचपन और युवावस्था में हेमू ने अपने दोस्तों के साथ लोगों को विदेशी सामान का बहिष्कार और स्वदेशी सामान के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने का अभियान चलाया.
हेमू कलानी ने क्रांतिकारी गतिविधियां भी चलाईं. हेमू स्वराज सेना के नेता थे, जो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन से संबद्ध विद्यार्थी संगठन था.
हेमू ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया. उन्हें सूचना मिली कि आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश प्रशासन यूरोपीय बटालियनों के साथ विशेष सेना सिंध भेज रहा है. हेमू ने रेलवे ट्रैक से फिश प्लेट उखाड़कर उस ट्रेन को पटरी से उतारने की योजना बनाई, जिसके जरिए सेना और रसद भेजी जा रही थी.
उणवीह सालन जे बालक जो जिगर हो जोश जवानी नर नारी जी हर जुबान थी बोले सत्य कहानी हेमू कालानी.
इससे पहले कि हेमू अपने उद्देश्य में सफल होते, ब्रिटिश सेना ने उन्हें और उनके साथियों को देख लिया। हेमू को पकड़कर जेल भेज दिया गया और यातना दी गई, लेकिन हेमू ने कुछ भी बताने से इंकार कर दिया।
21 जनवरी 1943 को फांसी के दिन हेमू कला ने हाथों में भगवद गीता लेकर मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे की तरफ बढ़े। महान स्वाधीनता सेनानी को शत शत नमन।
परिक्रमा में अब वक्त हो चला है खेलों की दुनिया की खबरें जानने का, तो सीधे हम आपको इस समय आईपीएल की ओर लिए चलते हैं। आईपीएल में आज दो मैच खेले जाएंगे। इस समय पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से हो रहा है। ताजा समाचार यह है कि 6 विकेट दिल्ली कैपिटल्स के गिर चुके हैं। 17वें ओवर की बॉलिंग हो रही है और 128 रन इस समय बोर्ड पर लगे हुए हैं। अक्षर पटेल जो है 12 रन बनाकर इस समय क्रीज पर, 9 बॉलों का वो सामना कर चुके हैं और सुमित कुमार को अभी खाता खोलना है। और आज ही एक अन्य मैच होगा और उस मैच में आमने सामने होंगी कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। मैच 7:30 बजे से शुरू होगा और मैच खेला जाएगा आपके फेवरेट कोलकाता के ईडन गार्डन में। और अब बात बैडमिंटन की। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज किदांबी श्रीकांत अपना दमखम दिखाएंगे और उनका मुकाबला होगा चीनी ताइपे के लिन चुन यी से। और मैच लगभग अगर बात करें तो भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे के बाद ही खेला जाएगा। तो ये थी खेलों की दुनिया की खबरें और अब वक्त है उन हस्तियों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि है, जयंती है या जन्मदिवस है।
यस, एंड वी स्टार्ट ऑफ विद डेम एलिजाबेथ रोजमोंड टेलर हु पास्ड ऑन दिस डे इन 2011। शी वाज अ ब्रिटिश एंड अमेरिकन एक्ट्रेस। शी बिगन अ करियर एज अ चाइल्ड एक्ट्रेस इन द अर्ली 1940s एंड वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टार्स ऑफ क्लासिकल हॉलीवुड सिनेमा इन द 1950s। शी बिकेम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड मूवी स्टार इन द 1960s and remained a well-known public figure for the rest of her life. In 1999, the American Film Institute ranked her 7th on its list of the most outstanding female screen legends.
आज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रखर चिंतक और समाजवादी राजनेता राम मनोहर लोहिया जी की जन्म जयंती है। आज ही के दिन सन 1910 में कस्बा अकबरपुर फैजाबाद में उनका जन्म हुआ था। राम मनोहर लोहिया को देश के एक अजय योद्धा, महान और विचारक के रूप में देखा जा सकता है। देश की राजनीति की बात करें तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और स्वतंत्रता के बाद ऐसे कई नेता हुए जिन्होंने अपने दम पर शासन का रुख ही बदल दिया और उनमें से एक थे राम मनोहर लोहिया। और अभिषेक लोहिया ने ऐसी 5 प्रकार की असमानताओं को चिन्हित किया है। अगर हम उस पर नजर डालें, स्त्री और पुरुष के बीच असमानता, त्वचा के रंग के आधार पर असमानता, जाति आधारित असमानता, कुछ देशों द्वारा दूसरे देशों पर औपनिवेशिक शासन और आर्थिक असमानता। इसके बाद लोहिया सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, लोहिया एक विचार थे, कर्मठ कार्यकर्ता थे, भारतीय राजनीतिज्ञ थे। समाजवाद राजनीति विचारों के एक समूह को एक संदर्भित करता है और लोहिया की बात करें तो उन्हीं में से एक थे। स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद उनकी दो अलग अलग भूमिकाएं थी। स्वतंत्रता से पहले की अगर बात करें तो सन 1934 में लोहिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर एक वामपंथी समूह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में सक्रिय रूप से शामिल हुए थे। दूसरे विश्व युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल करने का निर्णय का विरोध भी उन्होंने किया था और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा भारत के ब्रिटिश शासन को दूर हटाने के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया था। और स्वतंत्रता के बाद की उनकी भूमिका पर नजर डाले तो 1948 में लोहिया और अन्य सीएसपी सदस्यों ने कांग्रेस की सदस्यता थी वो छोड़ दी थी। 1952 में वो प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बने और 1955 में लोहिया ने एक नई सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी।
महाराजा सर भूपिंदर सिंह पास्ड अवे ऑन दिस डे 1938। ही वाज एन इंडियन रॉयल एंड क्रिकेट प्लेयर who was the ruling Maharaja of the princely state of Patiala in British India from 1900 to 1938. He was born into a Sidhu Royal Jat Sikh family, and also Kangana Amardeep Ranaut was born on this day in 1987. She is an actress and filmmaker who works primarily in Hindi films. Known for her portrayals of strong-willed, unconventional women in female-led cinema, she has received several awards, including 4 National Film Awards and she has also been featured 6 times in Forbes India's Celebrity 100 list. In 2020, the Government of India honored her with the Padma Shri, the country's 4th highest civilian award. At 16, Ranaut briefly took up modeling before being trained under theatre director Arvind Gaur. She debuted in the 2006 thriller Gangster, for which she was awarded the Filmfare Award for Best Female Debut. She received praise for portraying emotionally intense characters in the dramas Wo Lamhe in 2006, Life in a Metro 2007, and Fashion 2008. So let's go ahead and listen to a song from one of her movies.
आज भारत की स्वतंत्रता सेनानी और बंगाल के प्रसिद्ध नेता चित्तरंजन दास की पत्नी बसंती देवी की भी जयंती है। आज के दिन सन 1880 में कोलकाता में उनका जन्म हुआ था। चित्तरंजन दास की मृत्यु के पश्चात बसंती देवी ने देश के कई स्थानों का भ्रमण किया और चित्तरंजन दास के विचारों का प्रचार प्रसार किया। बसंती देवी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर असहयोग आंदोलन में शामिल हुई और सन 1922 में अंग्रेजों द्वारा चित्तरंजन दास को गिरफ्तार किए जाने के बाद चिटगांव राजनीतिक सम्मेलन की उन्होंने अध्यक्षता भी की।
अकिरा कुरोसावा वाज बोर्न ऑन दिस डे 1910। ही वाज अ जापानीज फिल्म मेकर एंड पेंटर हु डायरेक्टेड 30 फिल्म्स इन अ करियर स्पैनिंग ओवर 5 डेकेड्स। He is widely regarded as one of cinema's greatest and most influential filmmakers. Kurosawa displayed a bold, dynamic, strongly influenced by Western cinema, yet distinct from it, he was involved with all aspects of film production.
आज स्वाधीनता सेनानी सुहासिनी गांगुली की पुण्यतिथि है। भारतवर्ष की आजादी उनके जीवन का एक बहुत बड़ा सपना था, जिसे पूरा करने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। उनके इस त्याग में जीवन और साहसिक कार्य को सम्मान देने के लिए कोलकाता में एक सड़क का नाम भी सुहासिनी गांगुली सरनी रखा गया है और एक पुस्तक स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारी महिलाएं में उनके जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है।
किरण मजुमदार शॉ वाज बोर्न ऑन दिस डे 1953। शी इज एन इंडियन बिलियनर एंटरप्रेन्योर। शी इज द एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन एंड फाउंडर ऑफ बायोकॉन लिमिटेड एंड बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड, a biotechnology company based in Bangalore, India, and the former chairperson of the Indian Institute of Management, Bangalore. In 2014, she was awarded the Othma Gold Medal for outstanding contributions to the progress of science and chemistry. She was on the Financial Times 2011 Top 50 Women in Business list. In 2019, Forbes listed her as the 68th most powerful woman in the world. She was named EY World Entrepreneur of the Year 2020।
तो ये थे वो विशिष्ट व्यक्ति जो जुड़े हुए थे आज के दिन से, और कहीं ना कहीं इनका प्रभाव हमारे जीवन पर रहा ही है, फिर चाहे वो राम मनोहर लोहिया ही हों, बसंती देवी हों, या फिर जितने भी विशिष्ट व्यक्तियों को हमने याद किया। और अब हम याद कर रहे हैं उस त्यौहार को जो अब से बस कुछ ही दिन बाद, यानी दो दिन बाद आपके दरवाजे को खटखटाएगा, होली। और आपको बताते चलें कि होली न सिर्फ भारत देश में ही मनाई जाती है, बल्कि पूरा विश्व इसमें सराबोर होता है, जहां भी हम भारतीय रहते हैं या जहां भी हमारा जमावड़ा होता है। और इस समय अभिषेक मुझे इशारा कर रहे हैं कि वो हमें ले चलेंगे सीधा श्रीलंका, जहां पे होली का उत्सव अपनी धूमधाम लिए हुए है।
एब्सोल्युटली नवीन, द कलरफुल फेस्टिवल ऑफ होली वाज सेलिब्रेटेड बाय द इंडियन कल्चर Association in collaboration with the Swami Vivekananda Cultural Center in Sri Lanka's Colombo. Several hundred members of Indian diaspora and Sri Lankan nationals joined in the celebrations. For the celebrations, the Indian Cultural Association made elaborate arrangements, including gulal from India. Apart from arranging Indian cuisine, plays on Bhakta, Prahlad, and Lord Krishna were also performed before the celebrations. The festival of colors was marked by everyone splashing colors on one another and exchanging greetings.
तो दोस्तों, होली का त्यौहार जब आ ही चुका है आपके दरवाजे पर, तो बस इतनी सी गुजारिश है मेरी और अभिषेक की कि आप शांति से खेलिए, आराम से खेलिए, रंगों के साथ खेलिए, हुड़दंग मत मचाइए, मस्ती जरूर कीजिए लेकिन सब लिमिट में होना चाहिए। बहरहाल अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपकी एक बेहतर शाम की शुभकामनाओं के साथ मैं नवीन सक्सेना और अभिषेक मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम को हम यहीं विराम दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि आज के इस प्रोग्राम की एडिटर थी मनाल सईद और प्रोडक्शन असिस्टेंट नोमिनिता ने इस प्रोग्राम को बनाने में हमारा बहुत बहुत साथ दिया। आज के इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार।